खुदावंद के जलाली नाम में आज की सुबह में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, आए उसकी हिकमत और दनाई को मांगे, ताकि आज हम जो कुछ भी खुदा के बंदा पालूस के वसीला से, जो आज से 2000 साल पहले लिखा गया कलाम खुदा में, उसमें से सीखने वाले बने, खुदा की हिकमत और दनाई को मांगेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा भाप, तूने अपने कलाम में बड़े वाजह तौर पर ये कह दिया कि जब जब हम राहों से भटकते हैं तो तूने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा और मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, मैं तेरी राहों को दुरुस्त करूंगा, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा बाप, आज इसी कलाम के वसीला से हमें जिंदा कलाम यीशु मसीह की पहचान तक, उसके कद और उसकी गहराई और चौड़ाई और ऊंचाई को खुदावंद जानने की हिकमत और दनाई दे। और आज हम जो कुछ भी सीखें, जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे आए हैं, खुदावंद हम सब के दिलों की आंखों को रोशन कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाप, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे, और इस हिस्सा में से सीखेंगे कि पालूस रसूल उस वक्त के लोगों से गुफ्तगू करते हुए क्या चाहता था कि वो समझें, और आज हमारे लिए इस हिस्सा में क्या है। और खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को कहता है इफिसियों 2 बाप उसकी 11 आयत में यूं, बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रोह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं, अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना अमीर और दुनिया में खुदा से जुदा थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इससे पहले कि हम इस हिस्सा को सीखें, आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि पालूस रसूल अभी अभी पिछली 10 आयत में इस बात को वाजिया करके उसने बयान किया कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, आने वाले कोई भी कबीले में से हो, नस्ल में से हो, कोई भी जुबान बोलता हो, चाहे उसका कोई भी रंग हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी उसका कद या उसकी जात बात हो, अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो पालूस रसूल कहता है कि वो खुदा में नया मखलूक बन जाता है। ऐसी मखलूक जो खुदा की क्या है, कारकर्दगी है। और 11वीं आयत में पालूस रसूल उस फसाद को जो उस वक्त और आज भी दुनिया भर में बहुत से लोगों को उस झगड़े का, उस नातफाकी का और इस लड़ाई का सामना है, और वो ये है कि यहूदी जैसे उस दौर में कहते थे कि हम रूहानी हैं और बाकी सब खुदा के वादों से, नेमतों से महरूम हैं। और यहूदियों के सामने खुदा ने ये अहद रखा था कि जब तुम्हारे घर में पलौठा बेटा पैदा हो, जब भी कोई नर पैदा हो, तो 8वें दिन तू अपने बेटे का खतना करना, और अगर किसी गुलाम को तू खरीदे तो उसका भी खतना करना। और ये इस बात की अलामत थी कि वो उनके मुत्तहद हैं, वो यहूदी खानदान से और यहूदी रस्मों रिवाज को और उस ईमान को और इसराइल के खुदा को कबूल कर रहा है, कर रही है। तो यहाँ पर हमने जो कल बात सीखी थी वो ये थी, पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को ये बात याद दिलाता है। इफिसस शहर के रहने वाले लोग, ये शहर कैसा था? ये शहर बुत परस्ती से पुर था, इस शहर में बहुत ज्यादा मंदिर थे, इस शहर में देवी देवताओं के बहुत ज्यादा बड़े बड़े बुत थे, और इफिसस शहर में जो देवी थी जिसकी बहुत ज्यादा लोग पूजा करते थे, वो खूबसूरत देवी थी, वो क्या कहते हैं कि हुस्न की देवी थी, जिसे लोग मानते थे पूजते थे। लेकिन जब पालूस रसूल वहां पर गया तो उसने खुदावंद यसुम सी की अंजील की खुशखबरी उन गैर कौम वालों को सुनाई जिन्होंने पहले कभी खुदावंद यसुम सी का नाम सुना ही नहीं था। और इसीलिए पालूस रसूल यहाँ पर उन्हें ये अल्फाज कहकर पुकारता, कहता है, पस याद करो तुम जो जिस्म के रो से गैर कौम वाले हो, वो उन तमाम इफिसस के रहने वाले लोगों को जो यीशु पर ईमान नहीं लाए थे, जो यीशु से दूर थे, उनको कहता है तुम जिस्म के रौ से क्या हो, गैर कौम वाले। और गैर कौमों में कौन सा कबीला है, हर एक कबीला सवाए यहूदियों के। इसलिए ये बात का मसला था उन तमाम ईमानदारों को उस दौर में जो नए नए मसीही होते थे। जैसे आज के दौर में अगर कोई मसीह को कबूल करता है तो बहुत दफा उसे जान का खतरा है, बहुत दफा उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, बहुत दफा उससे परहेज किया जाता है, बहुत दफा उसे रद्द किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, और बहुत दफा नीचा गिना जाता है। ऐसा ही है ना, जैसे पाको हिंद में यानी कि हिंदुस्तान में लोग छूत रखते थे, जो अमीर लोग थे, जो क्या कहते थे कि दौलतमंद लोग थे, वो उस दौर में जो गरीब थे उनसे नफरत करते थे। जो हिंदू थे वो गैर हिंदुओं से क्या करते थे, परहेज करते थे, और उनसे लड़ाई झगड़ा उनका हमेशा रहता था। आप जितनों ने तारीख को पढ़ा है या मशरतिया उलूम की किताब में बहुत से रिवाज को देखा है, ऐसा ही था। तो उस दौर में ये बातों का सामना था कलीसिया में उन तमाम लोगों को जो यसु मसीह को कबूल करते थे। और यहूदी उनको क्या कहते थे कि हम मख्तून हैं, हमारा खतना हुआ है, हम खुदा की कौम है, हम खुदा की नस्ल है, लेकिन तुम नहीं हो क्योंकि तुम नामख्तून हो, उनका खतना नहीं हुआ था। और इसीलिए वो लोग यहूदी लोग उस वक्त के ईमानदारों को ये धमकी और ये बात बताते थे। 12वीं आयत में क्या लिखा है, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना अमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। पालूस रसूल ये बात लिखते हुए जब वो उस कैद खाना में है, जब उसने ये हालात सुने और वो रोमी कैद खाना में बंद है, जेल कैदी की हालत में है, उसके शगिर्द उसे आके बताते हैं, उसके मानने वाले जो हर वक्त इस बात के मुंतजर रहते थे, जैसे आप में से बहुत से हैं जो हर सुबह इस बात के मुंतजर या इंतजार करते हैं कि कब चर्च में स्पीकर में ऐलान हो, अगर ना भी हो तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम खुदा के कलाम की आवाज को सुने। ऐसे ही उस दौर में पालूस जब कैद खाना में था तो लोग उसका इंतजार करते थे कि वो उन्हें खुदा की राह के बारे में बताए। तो उस दौर में जब वो जेल खाना में बैठा है इस खत को लिखते हुए कलीसिया को जो इफिसस शहर में रहती थी, ये शहर मालो दौलत में बहुत ज्यादा तरक्की में था, बुत परस्ती में बहुत ज्यादा मंदिर थे, लोग बहुत से बुतों की इबादत करते थे, बुतों को देवी देवताओं को मानते थे। तो पालूस रसूल उन बुत परस्त लोगों को जिन्होंने बुत परस्ती छोड़कर यीशु को कबूल किया, उन्हें ये बातें लिखता है और कहता है कि तुम्हें ये बातों का सामना है यहूदियों से। और यहूदी क्या कहते थे कि अगले जमाना में मसीह से जुदा, ये यहूदियों की बात थी, ये उस वक्त की कलीसिया को जो मसीह पर ईमान लाए थे उनको ये सामना था कि तुम गुजरे जमाना में मसीह से जुदा थे। और ये बिल्कुल सच है, हम सब मसीह से जुदा पैदा हुए, इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल वाजिया तौर पर कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, जुदा हैं। हम सब रूहानी तौर पर खुदा से जुदाई में पैदा हुए थे। तो पालूस रसूल उनको ये बात याद दिलाते हुए कहता है, हाँ, अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। ये उनका माजी था, जैसे कि गुजरे हुए वक्त में ये तुम्हारी हालत थी, लेकिन अब तुम ऐसे नहीं हो। तो आज हम इस छोटे से जुमले को सीखेंगे कि अगले जमाना में मसीह से जुदा। आप सबको पता है कि बाइबल मुकद्दस इब्तदा से लेकर आखिर तक इस बात के बारे में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था, और वो ये था कि खोए हुओं को, धुतकारे हुओं को, भटकी हुई उन तमाम भेड़ों को, उन तमाम लोगों को, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है लूका की अंजील उसके 19वें बाप उसकी 10वीं आयत में, कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढे ढूंढने और निजात देने आया है। वो इसराइल की तमाम भेड़ों को जो खोई हुई थी, जिन्होंने मसीह का इनकार कर दिया, उनको ढूंढने के लिए आया, और वो उन तमाम गैर कौमों को जिनमें आज हम सब भी शामिल हैं ढूंढने के लिए आया। इसीलिए आज हम उसका बदन हैं, आज इसीलिए हम कलीसिया कहलाते हैं, आज इसीलिए हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जब यीशु मसीह बादशाह होगा, नया जेरूशलम उतरेगा आसमान से जमीन पर, तो कलीसिया उसकी दुल्हन ठहरेगी। सो इफिसस की कलीसिया उन भेड़ों की मानद भटक रही थी, तो यीशु मसीह का पैगाम पालूस रसूल उन तक लेके जाता है, और इसके बारे में यीशु मसीह ने शुरू ही में कह दिया था। मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाप, और ये बाप इस बात से मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस 10वें बाप में यूहन्ना की अंजील में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और वो मेरी भेड़े हैं जो मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो यूहन्ना की अंजील 10 बाप उसकी 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। 16वीं आयत पर गौर कीजिए क्या लिखा है, और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भीड़खाना की नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, उस वक्त के यहूदियों से बात करते हुए कहता है कि तुम इसराइल के खानदान के लोग हो, लेकिन मेरी और भी भेड़े हैं। यीशु मसीह का इशारा किस तरफ था, आपकी तरफ, इफिसस की कलीसिया की तरफ, कि वो तमाम यीशु मसीह की भेड़े हैं जो खोई हुई हैं। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, उनको भी ढूंढना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। आज जो कोई भी किसी भी कबीले, किसी भी नस्ल, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी जात पात से तलक रखता है, जब वो यीशु मसीह पर यकीन रखता है, रखती है, तो वो उसकी आवाज़ को सुनती है, और क्या होता है, वो यीशु मसीह की भेड़ बन जाती है, और फिर वो खुदा से जुदा नहीं। वो उम्मीद के वो तमाम वादे हैं, जो तमाम बरकात हैं, उससे यीशु मसीह में मिल जाती हैं। और क्या कहा है 16वीं आयत के दूसरे सम, फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है कि जब मैं बादशाही करने के लिए आऊंगा, तो मैं निगाहबान हूंगा, मैं चरवाहा हूंगा, और मेरा एक ही गल्ला होगा। उसमें कोई भी ये बात नहीं कहेगा, जैसे पालूस रसूल सिखाता है, जैसे यहूदी कहते थे कि तुम गुलाम हो, तुम यूनानी हो, तुम रूहानी हो, तुम जिस्मानी हो, तुम ये हो, तुम फला हो, फो टमका हो, तो ऐसी बात नहीं होगी। पालूस रसूल कहता है, वहाँ ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वाशी, ना स्तोईकी, ना गुलाम, ना आज़ाद, बल्कि मसीह सब कुछ और सब में है। तो मसीह इसीलिए आया कि हम उसमें एक बन सकें, और मसीह में हमें ये सब बरकतें मिलती हैं। लेकिन अगले ज़माना में पालूस कहता है कि इफिसस की कलीसिया एक दौर में यीशु मसीह से दूर दूर थी, ना वाकफ थी, उन्हें कोई उसके बारे में इलम नहीं था, क्योंकि इफिसस के लोग देवी देवताओं को हाथ के बनाए हुए बुतों की इबादत करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अंजील की खुशखबरी नहीं सुनी। लेकिन पालूस ने जब उनको खुशखबरी सुनाई कि एक जिंदा खुदा है, मैंने तुम्हारे बुतों को देखा कि तुम्हें बहुत से मंदिर हैं, लेकिन एक मैंने इबादतगाह देखी जहां पर लिखा है कि नामालूम खुदा के लिए। मैं उसी खुदा के बारे में पालूस ने कहा कि तुम्हें बताने के लिए आया हूं, जो जिंदा है, जो जिंदगी की सांस देता है, जो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में और हाथ के बनाए हुए पुतलों का खुदा नहीं है। जब यीशु मसीह की खुशखबरी इफिसस की कलीसिया को पालूस ने दी, तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और उस हुसन की देवी को और दूसरे देवी देवताओं को छोड़कर, उनकी पूजा को छोड़कर, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह की बात मानना शुरू की। इसलिए आज आपसे सवाल है कि आज लोग बहुत ये बड़ा दावा करते हैं, ओके जी ठीक है, यीशु मसीह की भी इबादत करें, कब्रों को भी पूजें, यीशु मसीह की इबादत करें और फिर मुर्दा लोगों की भी इबादत करें। बाइबल मुकद्दस ऐसी इबादत और परस्तिश की कोई भी गवाही नहीं देती। बाइबल मुकद्दस ऐसी इबादत और परस्तिश के बारे में कहती है कि खुदा उसे कबूल नहीं करता। इसलिए जैसे वो उस वक्त में गुंगो बुतों की पूजा करते थे, हम भी एक दौर में, हम सब जब ने मसीह को कबूल किया, जैसे मैं बहुत साल पहले, 10 साल पहले, जब मैं चिरागों को जलाता था, देवी देवताओं की, हनुमान की और दूसरी तस्वीरों की और बुतों की पूजा करता था। और इसके बारे में पालूस रसूल कहता है, जब पालूस ने करंथियों की कलीसिया को ये बात बताई, पहला करंथियों उसका 12वां बाप उसकी 2री आयत में उनको कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे, जब तुम यीशु मसीह से वाकफ नहीं थे, जब हम भी यीशु मसीह से वाकफ नहीं थे, तो हम भी गूंगे बुतों की पूजा करते थे, जिस तरह कोई हमको कहता था हम उसी तरह करते थे। लेकिन अब यीशु मसीह को कबूल करने के बायस सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही निजात का जरिया है, और जिसके बारे में पालूस इमाल 4 बाब उसकी 12 आयत में कहता है कि आसमान और जमीन के, आसमान पर और जमीन के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। तो सवाल आज आपसे ये है, क्या आज हम जो कुछ करते हैं मसीह के कहने के मुताबिक करते हैं? क्या आज हम बुत परस्ती में तो नहीं फंसे हुए? क्या आज हम लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, हाँ जी ठीक है, कब्रों पर भी जाएं, बाबों को भी, बकरे भी दें और ये भी नजरें उतारें और वो भी करें और ये भी करें? इसलिए हमें इफिसस की कलीसिया की तरह कबूल करके खुदावन में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आज हमने सिर्फ इस बात पर गौर किया कि गुजरे जमाना में वो मसीह से जुदा थे, जैसे वो जुदा थे कबूल करने से वो मसीह के नजदीक हुए, वैसे हम भी जुदा थे कबूल करने से मसीह के अपने लोग ठहरे। सो हमें मसीह के सिवाय, खुदा के सिवाय किसी और की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस दुनिया के अपने रिवाज के, इंसानी रीति रिवाज और अपने दादा परदादा की बातों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मसीह के पीछे पीछे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सब पुश्तें आरजी हैं, लेकिन खुदावन खुदा अब्दुलबाद तक है, अब तक है। सो वही इबादत और परस्तिश के लायक है। आए हम खुदावन के जुड़ चुके और इस बात को साथ लेकर जाएं कि हम इस जमीन पर इसीलिए हैं, जैसे यशवा ने कहा, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन ही की परस्तिश करेंगे, फैसला हम सबके अपने हाथ में है। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, सारी कलीसिया के साथ हो, और हर तरह की बुत प्रस्ती और जादूगरी और हर तरह की शरारत प्रस्ती से हमें बचा के रख। सिर्फ तेरी ही प्रस्तुति करें, क्योंकि तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो तेरी प्रस्तुति शुरू और सच्चाई से करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।